നമോരന്താണം നമോ സിദ്ധാണം നമോ ആര്യാണം നമോ ചാരാണം നമോ മംഗളം ഭഗവാൻ വീരോ മംഗളം ഗൗതമോ മംഗളം കുന്ദകന്ദമംഗലമംഗല്യം സർവകല്യാണകാരകം പ്രധാനം സർവധർമാണ ജയനം ജയതു ശാസനം ജയനം ജയതു ശാസനം ജയനം ജയതു ശാസനം വന്ദേതു സൗവസിദ്ധി ദുർമചല മനോവമംഗതിം പത്തേ ഓച്ഛാമി സമയ പാവരേ വീണമസ്തു കേവലീ മണിദം നമ സമയ സാരായ സ്വാനുഭൂത്യാചകാസതേ ചിത്സ്വഭാവായ ഭാവായ സർവഭാവാന്തരം നിസംഗഹേ जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता उन दिव्य गुरुओं की अब कैसी अलौकिक शूरता।
144 का था
उनका एक लगे ना एक तरह से कम हो जाएगा आप 8 to 5 तक
गाथा पाठ सम्मत दंशन नाणम ए 16 दित्तिणवरी वदेशम सौवणय पत्थर हिदो कर्ता कर्म अधिकार की अंतिम गाथा। इसमें जीव को अंतिम गाथा से पूरे अधिकार का सार समझने का अवसर है। सार अर्थात निचोड़, समय नहीं हो और काम करना हो, समय नहीं हो और काम करना हो। काम का मतलब सांसारिक काम नहीं, ये तो अनादि से चली रहे हैं और कभी समाप्त नहीं होते। करने योग्य काम तो एक ही है, जिस काम से विकल्पों का अभाव हो जाए, जिस काम से राग द्वेष की उत्पत्ति न हो, ये नास्तिक की बात है। जिस काम से अतिंद्रिय आनंद और अतिंद्रिय शांति की प्राप्ति हो, वो काम करने योग्य है। कौन सा? कि जिस काम से विकल्पों का जंजाल दूर हो जाए, राग द्वेष ना हो, राग द्वेष के नहीं होने से आकुलता ना हो, अतिंद्रिय आनंद और अतिंद्रिय शांति, अतिंद्रिय सुख की प्राप्ति हो, और भाषाएं दूसरी है, कर्म का बंध ना हो, और जीव शीघ्र ही पूर्ण सुख को प्राप्त हो, वो काम अनादिकाल से अनंतानंत ज्ञानियों ने किया, वो काम आज भी हो रहा है। स्वामी जी के प्रवचनों में 608 जीवों की, 6 महीना 8 समय में 608 जीव आया था ना, मोक्ष जा रहे, और इतने ही जीव नित्य निबोध राशि से व्यवहार राशि में आ भी रहे, मोक्ष जा रहे हैं, जा सकते हैं। हम अपना अपना विचार करें, हमें जाना है या नहीं जाना है, जाना है तो मार्ग क्या है, बात समझ में आ गई, जाना है तो उसका मार्ग क्या है, मार्ग यथार्थ समझना, और ये तो बुद्धिपूर्वक की बात है, यथार्थ समझने की, समझ में आ जाए तो चूकना नहीं, वरना उसकी आदत पड़ जाएगी, रोज सुनते रहेंगे है? आदत नहीं पड़े, उससे पहले काम हो जाए, आदत पड़ जाए तो फिर रोज वही बात हो जाएगी, और कोई थोड़े से अपने से कम समझने वाला हो तो उसको समझा भी देंगे, लेकिन अपना काम रह जाएगा। ऐसी भूल ना हो, लोक व्यवहार की भूल से कोई नुकसान नहीं है। स्वामी जी की पुस्तक थी मूल में भूल, पढ़ी होगी मूल में भूल, सबसे पहले पंडित साहब मैंने वो पढ़ी थी, और तब से ही थोड़ा सा ढलान इधर हो गया था। मूल में भूल, भाई रोटी नहीं बनाती, पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती है, निमित्ताधीन दृष्टि वाले आज भी इस तरह की बातों का विरोध करते हैं, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं, माध्यस्थ भाव रख करके अपना काम कैसे हो। वहां तो वस्तु की स्वतंत्रता की बात थी, एक एक परमाणु मात्र स्वतंत्र है, कोई किसी के अधीन नहीं है, प्रत्येक परमाणु परमाणु का परिणमन स्वतंत्र है, आग के कारण से तवा गर्म नहीं होता, तवे के गर्म होने से रोटी नहीं सिकती। स्वामी जी तो यूं हाथ करके कहते हैं कि परछाई जो पड़ रही है यहाँ के परमाणु, उसकी पर्याय स्वतंत्र है, और हाथ के परमाणुओं की पर्याय स्वतंत्र है, इसके कारण से वो नहीं। बात परमागम मंदिर की भी आ गई, कौन बनाए? परमाणु परमाणु जहाँ स्वतंत्र है, निमित्त भी तब है जब सामने वाले के अनुकूलता का आरोप हो। मैं प्रवचन करने वाला पंडित, ये जो भाषा वर्ग ना तेरे अधीन हो गई, पंडित किसे कहते? हिताहित विवेकिनी बुद्धि पंडा, पंडित शब्द की व्याख्या ही है, हिताहित विवेकिनी बुद्धि पंडा, समझ में आ गई बात? उस बुद्धि को पंडा कहा गया जो बुद्धि हित और अहित का विचार करती है। हित और अहित का विचार करने वाली बुद्धि वो पंडा, और वो जिसमें होती है वो कहलाता है पंडित है? कि प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है, मेरा हित इसी में है, और उस वस्तु का हित भी इसी में है। स्वामी जी ने तो तीसरी गाथा के आधार पर उद्धरण के रूप में छठी गाथा के व्याख्यान में कि परस्परम चुंबन्तो अपि इन शब्दों का उच्चारण किया कि परस्पर एक क्षेत्रावगाह में रहते हुए भी कोई परमाणु कोई द्रव्य अन्य द्रव्य नो अड़तो नथी, कोई द्रव्य किसी द्रव्य को छूता नहीं है, किसी का परिणमन किसी के अधीन नहीं है, किसी के करने से कोई परिणमन होता नहीं है। कर्तृत्व बुद्धि छोड़ करके पक्षातिक्रांत होने के लिए गाथा है। अंत में पक्षातिक्रांत की चर्चा क्यों आई कि पहले दो दोष आ गए 69वीं गाथा से लेकर, एक तो कर्ता कर्म का दोष और दूसरा है भाव्य भावक दोष, और वो दोष न रहे। बात समझ में आ गई? कोई भी अपने आप को निर्दोष देखना समझना और मानना चाहता है कि मैं तो निर्दोष हूँ, और अध्यात्म की भाषा में कहे कि जब तक यह पर्याय बुद्धि में है तब तक दोष लगे बिना नहीं रहता। बात समझ में आ गई? कि जैसे काजल की कोठरी में कितना ही बुद्धिमान व्यक्ति चला जाए दोष लगे बिना नहीं रहता, ऐसे ही जब तक पर्याय बुद्धि है तब तक दोष लगे बिना नहीं रहे। क्षमावाणी के दिन स्वामी जी ने यही कहकर के क्षमा मांगी थी कि यदि मैंने किसी को पर्याय बुद्धि से पर्याय दृष्टि से देखा हो तो क्षमा करना। क्या क्षमावाणी होती है ना, कि पर्याय दृष्टि से देखा हो। समय सार की पहली गाथा में ये बात है कि भगवान की निश्चय स्तुति और भगवान की व्यवहार स्तुति क्या है, सिद्धों की, कि सिद्धों की अपने में स्थापना करना ये सिद्धों की निश्चय स्तुति है, और सिद्ध समान अन्य को देखना ये सिद्धों की व्यवहार स्तुति है। पढ़ी होगी पहली गाथा संस्कृत टीका में अमृतचंद्राचार्य कि निश्चय स्तुति और व्यवहार स्तुति क्या है, कि अपने में सिद्धत्व की स्थापना करना अर्थात अपने को सिद्ध समान अनुभव करना ये सिद्धों की निश्चय स्तुति है, और अन्य जीवों को पर्याय दृष्टि से नहीं बल्कि सिद्ध समान देखना ये व्यवहार स्तुति है। अब स्वामी जी के उस उद्धरण से क्या समझ में आता है कि निश्चय स्तुति तो थी ही व्यवहार स्तुति भी लोकोत्तर। बात समझ में आ गई कि अपने को सिद्ध समान देखना ये निश्चय स्तुति, और अन्य को सिद्ध जैसा देखना सिद्ध समान देखना पर्याय दृष्टि से नहीं देखना ये व्यवहार स्तुति। और आगे संस्कृत पढ़ने के बहुत सारे फायदे हैं सर, कि उस गाथा की टीका में अंत में लिखते हैं कि निश्चय से और व्यवहार से परिभाषणम उपक्रम्यते प्रयास करते हैं, विकल्प रहे ये जरूरी नहीं। समझ में आ गई बात? क्या कहा? पहली गाथा की टीका में अंतिम शब्द है कि आत्मख्याति टीका लिखने का प्रयास करते हैं उपक्रम्यते, लिखता हूं ये तो अनुवाद है नीचे जो किया, उपक्रम्यते मूल में शब्द है, उसका अर्थ क्या है कि उपक्रम करते हैं कोशिश करते हैं प्रयास करते हैं, विकल्प की आयु तो एक समय की है, वो रहे नहीं रहे कोई जरूरी नहीं। बात समझ में आ गई? जैसे वीरसेन स्वामी ने कषाय पावट ग्रंथ की टीका लिखना प्रारंभ कर दी, 40,000 श्लोक प्रमाण लिख भी दी लेकिन आयु, षटखंडागम में भी यही हुआ, पुष्पदंत बड़े थे भूत बलि छोटे, मात्र 177 सूत्र लिख पाए पुष्पदंत, आयु समाप्त हो गई। या तो विकल्प समाप्त हो जाए या आयु समाप्त हो जाए तो काम वैसा रह जाए। इसलिए वहां अंत में लिखा कि उपक्रम में थे प्रयास करते हैं हो, ये कोई जरूरी नहीं। यही बात समझ, हर कोई, मुझे शाम को घूमते समय भी ये विकल्प आया कि और लोगों के पास तो क्रियाकांड है, हमारे पास तत्व है। बात समझ में आ गई? धर्म के नाम पर समझने और समाने के लिए तत्व है प्रभु। यदि यही विकल्प कहां से आ गया कि यदि स्वामी जी नहीं होते तो, यहां से आ कि क्या होता कि यही मान के चलते कि व्रत करो, उपवास करो, इतना ये करो, वो करो, हो जाएगा, तत्व से बहुत दूर रह जाते। इससे क्या होता कि पुण्य बंध जाता थोड़ा बहुत, यदि यथा योग्य भावना हो तो। घातिया कर्मों का तो निरंतर ही बंद हो रहा है, वो पाप प्रकृतियां नहीं होते तो क्या होता? समझ में आ गई बात? ये होता कि अपने पास तो इतना अलौकिक तत्व है, मतलब विद्यमान है, और उसकी एक एक चीज, एक एक बारीकी समझ में आ रही है, और समझाने वाले बैठे ही हैं। समय समय पर शिविर लगता है, ज्ञानियों का सानिध्य मिल जाता है, सत्समागम होता है, फिर भी दूसरे शिविर का इंतजार पक्षातिक्रांत होने के लिए कर रहे हैं तो अभी तैयारी नहीं है। कितनी सी बात है, संसार के काम तो दिन भर करा लो और स्वरूप में जाने के लिए कहो। कितना सा काम है स्वरूप में जाना है और स्वरूप में रहना है, कि पर्याय की दिशा जो पर की ओर है उसको स्वरूप की ओर मोड़ना है, लेकिन वो अपने आप नहीं मुड़ेगी जब तक कि वो अंदर चैतन्य भज्ञायक भगवान आत्मा की महिमा नहीं आएगी। इसी गाथा के अंत में एक शब्द आएगा, विश्वस्य उपरी तरंत, संस्कृत का में कि विश्वस्य उपरी तरंतम इव, दिख गया शब्द कि विश्वस्य उपरी तरंतम इव, क्या अर्थ है इसका कि अपना निज चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा विश्व सारे तीन लोक की संपदा से भी अधिक महिमावान लगे, क्योंकि मेरा अतीन्द्रिय सुख यहीं से निकलना है, विश्व के वैभव से नहीं निकलना है। कि विश्वस्य उपरी तरंत, मुनि राजों को प्रश्न है कि अपने आत्मा की महिमा आती है या भगवान की महिमा आती है? चर्चा संघ में प्रश्न है चेतन भाई ब्रह्मचारी रागिनी जी का कि मुनि राज को आहार करना अच्छा लगता है या उपवास करना अच्छा लगता है? शरीर में शिथिलता दिखे तो उपवास करते हैं, और शरीर में कमजोरी लगे, शिथिलता मतलब प्रमाद वाली, और यदि शरीर में वैसी कमजोरी लगे तो वो आहार लेते हैं। न आहार लेने का आग्रह है न उपवास करने का आग्रह, वो तो उनकी सहज दशा होती है। कि प्रचुर स्व संवेदन जिनकी मोहर होती है, स्वामी जी कहते ना कि मुनि कौन है, उनकी छाप क्या है, जैसे जिनेंद्र भगवान की वाणी की छाप स्यात पद है। कौन सा पद है? स्यात पद। वैसे मुनिराज की छाप क्या है कि मुनिराज की छाप प्रचुर स्व संवेदन है, कि जो निज चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा के प्रचुर स्व संवेदन में निरंतर रहते हैं। 28 मूल गुणों का राग तो बोझा लगता है, बताओ कौन कहे ये बात है? कि 28 मूल गुणों का पालन करने का विकल्प भी जिनको बोझा लगता है, लेकिन किनको लगता है कि जिनके प्रचुर आत्म स्वसंवेदन चलता है उनको लगता है, जिनको आत्मा का पता नहीं स्वसंवेदन का पता नहीं उनके लिए 28 मूल गुण ही बोझा कहाँ लगते हैं, वो तो जय जयकार का कारण होते हैं। कि जो प्रचुर स्वसंवेदन में रहते हैं ऐसे मुनि भगवंतों को 28 मूल गुणों का जो विचार है विकल्प है वो भी बोझा जैसा लगता है, लेकिन किसको ये बात समझ में। ऐसा ही एक प्रश्न किरण भाई से चर्चा भी हुई थी इस बारे में, स्वामी जी से पूछा नैरोबी की ही बात कि खाते पीते उठते बैठते सम्यक दर्शन हो जाएगा, आत्मानुभूति हो जाएगी, कि स्वामी जी ने कहा नहीं होगी। तो मुनि राजों के तो होती है, चलते फिरते आते जाते होती है। तो जवाब क्या दिया कि उनके अभ्यास है इसलिए सहज है, गृहस्थों के अभ्यास नहीं है, इसलिए उनके अभ्यास को अपने जीवन में जब उतारो तब तुम्हें भी ऐसा हो जाएगा, लेकिन अभ्यास नहीं है तब तक है? अरे बे क्या दो चार घड़ी स्वाध्याय होना चाहिए, मन से होना चाहिए, वो तो हो नहीं रहा है। केवल स्थूल क्रिया स्वाध्याय की क्रिया भी नहीं हो रही है तो बाकी तो देखो मुमुक्षुता तो कहाँ। चलो पढ़ते हैं आगे, सामान्य अर्थ समझते हैं पहले दोबारा। अयम एक एव केवलम पक्षाति क्रांत ही, ये जो जीव है उसी को पर्याय सहित द्रव्य जिसमें जानने में आया, ऐसी अभेद अवस्था में जब यह जीव है तब उस अवैध अवस्था को श्रद्धा की अपेक्षा सम्यक दर्शन और ज्ञान की अपेक्षा सम्यक ज्ञान, व्यपदेश ऐसा व्यवहार। क्या है व्यपदेश? हिंदी में तो साफ कमजोरी हो जाती है, जो अनुवाद है वही पढ़ना पड़ता है, नाम तो नाम ही पढ़ना पड़ेगा। क्या लिखा है? व्यपदेश व्यवहार है, मतलब यही नाम है ऐसा नहीं है। नाम स्थापना द्रव्य और भाव निक्षेप ही है ना सारी चीजें, तो ये तो केवल नाम दिया गया है, वस्तु नाम जितनी नहीं है, सम्यक ज्ञान जितनी नहीं है, सम्यक दर्शन जितनी नहीं है, और पक्षातिक्रांत होने पर सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन ये दो ही चीजें प्रकट होती है ऐसा नहीं, सम्यक चारित्र भी प्रकट होता है और केवल ये रत्नत्रय ही प्रकट होता है ऐसा नहीं, अनंतानंत गुण जो विपरीत मार्ग में थे विपरीत परिणमन जिनका था सबका स्वभाव अनुकूल परिणमन होता है, अनंत गुणों का एक कई नहीं। कि पक्षादि क्रांत होते ही देखो ये जिनागम की विशेषता, अन्य धर्म में दास बनाकर रखते हैं, जिनागम तो भगवान की बात करता है, निगोदिया जीव में भी भगवान देखे वो जिनागम ही है, और किसमें ताकत है इतनी है? कि निगोदिया जीव भी वो था ना पेड़ नीम का सोनगढ़ में, गर्मी के दिनों में फूल बिखरे पड़े थे नीम के छोटे छोटे सफेद, आ अनंत सिद्ध बिखरा पड़ा छे कितनी उदार कितनी निष्पक्ष कैसी दृष्टि, धन्य है कि निगोद में भी अपने यहां अशुद्ध पर्याय में भी अशुद्धता के काल में भी राग के काल में भी भगवान आत्मा वीतराग स्वरूप है, ये बात। तो मोक्ष गए तब वीतराग हो गए वो तो अलग बात है, नहीं आई बात। चेतन भाई कह रहे थे कि जो शुद्ध मिल जाए, शुद्ध को तूने देख लिया तो क्या देख लिया है? तेरा पुरुषार्थ कहाँ रहा? छिलके सहित केला हो, उस केले को छिलके रहित देखना है? राग होते हुए वीतराग स्वरूप को देखना, क्यों? वीतराग स्वरूप को देखना ये कोई कल्पना नहीं, उस समय वीतराग स्वरूप है। बात समझ में आ गई? अरे राग रहते केवल ज्ञान तक पहुंच जाता है जी। राग में एकत्व करो तो सम्यक दर्शन भी नहीं होता। शरीर रहते रहते केवल ज्ञान हो जाए, नहीं आई बात समझ? राग रहते केवल ज्ञान तब पहुंच जाता, शरीर रहते केवल ज्ञान हो जाता है, औदारिक शरीर परम औदारिक हो जाता है। शरीर रहते हुए केवल ज्ञान होता है क्या? नहीं होता है ना। शरीर में एकत्व बुद्धि रहते हुए धर्म का अंश भी प्रकट नहीं होता है। शरीर इतना बाधक नहीं है, घातक नहीं है। शरीर में जो एकत्व बुद्धि है वो नुकसान देती। अरे चैतन्य तत्व की चर्चा करो तो न भूख लगे न प्यास लगे। भेंसरी तो स्वानुभूति दर्शन में 135वें बोल में जो चर्चा है उसमें कहती है कि उन्होंने तो ये कहा कि खाते उठते बैठते यही चर्चा चले है? नहीं आई बात? कल चर्चा आई थी क्रिया परिणाम अभिप्राय उपासना कि ज्ञान के काल में भी ज्ञानावरण का बंद क्यों हो रहा है? एक प्रश्न याद आ गया, रह जाएगा कि ज्ञानी को आत्मा की महिमा आती है या भगवान की महिमा आती है? कि अपनी परिणति स्वरूप में जाती हुई दिख जाए तो आत्मा की महिमा आती है, और सविकल्प में रहे तो है? बात समझ में आ गई कि आत्मा की महिमा आती है क्या उनकी महिमा आती है? कि असल में तो तारणहार तो निज स्वरूप ही है। वीतरागता जिसके आश्रय से प्रकट होती है वो तो अपना निज रूप ही है, है? और जब निज रूप में स्थिर नहीं रह पाते हैं तो देव गुरु शास्त्र की महिमा आती है, भक्ति आती है। अभी आएगी पंक्तियों आने वाली है कि जिसमें मति ज्ञान की बुद्धियों को अवधार्य शब्द है, है? कि मति ज्ञान की पांच इंद्रिया और मन, पांच इंद्रिया और मन, तो इसको अपने में समेट कर, ये तो हो गया था देखो कुंदगंदा अमृत चंद्राचार्य की बात, ये तो उन्होंने लिखा। अब इसकी व्याख्या करते हुए पूज्य गुरुदेव श्री क्या कहते हैं कि आंख खोलेगा तो भगवान की मूर्ति दिखाई देगी। मतलब दूसरे व्यवहार की बात नहीं किया, बात ये नहीं है कि दूसरा जो व्यवहार है कि भोजन की थाली दिखेगी या मकान दुकान दिखेगा, उसकी बात नहीं की। कौन सी बात की? आंख खोलेगा तो भगवान की मूर्ति दिखेगी, मुंह से भगवान की भक्ति के शब्द निकलेंगे, भगवान की भक्ति होगी, लेकिन ये सब राग है, शुभ राग है। या? ये क्या है? शुभ राग। ये शुभ राग भी जीव को मोक्ष नहीं पहुंचा सकता, ये शुभ राग निर्मलता प्रकट नहीं कराता, भटकाने वाला है। जैन दर्शन तो वो चीज है कि निर्मल पर्याय के आश्रय से भी दूसरी निर्मल पर्याय प्रकट नहीं होती, इसलिए निर्मल पर्याय भी आश्रय योग्य नहीं है। जैसे वो श्री पद्म आदि सरोवर है ना, कि जहां से अनादि काल से पानी निकल रहा है, पद्म सरोवर है ना, ये इतना तो स्थूल पढ़ाई होगा सबने, अनादि काल से उसमें से पानी निकल रहा है लेकिन कभी समाप्त नहीं होता, उसी पानी में से ये नदियां निकलती है, गंगा सिंधु। लेकिन गंगा सिंधु से दूसरी गंगा सिंधु नहीं निकलती। बात समझ में आ गई? ऐसे ही चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा के आश्रय से निर्मल पर्याय उत्पन्न होती है, लेकिन निर्मल पर्याय का लक्ष्य करके दूसरी निर्मल पर्याय उत्पन्न नहीं होती है। कि शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा के आश्रय से ही, आश्रय योग्य तीनों लोक में कोई यदि पदार्थ है तो कि निज शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा, निज विशेषण मत भूलना, अपना ही है। और वो उसका आश्रय कैसे लिया जाता है कि उसके आश्रय में ये तीन बातें यहाँ पर बताई। पहली बात तो ये बताई कि आगम का सेवन, अवष्टम्बन शब्द है, कि श्रुत ज्ञान अवष्टम्बन, प्रथमतः शब्द लिखा ना, तीन काम करने के लिए कहा कि प्रथमतः तह का अर्थ भी अपन ने समझा था दोपहर में, हिंदी में तो प्रथम का प्रथम ही अनुवाद कर दिया। अब एक शब्द में कोई प्रत्यय जोड़ करके आचार्य ने, वो अमृतचंद्र जैसे आचार्य, एक बात और बताऊं कि संस्कृत भाषाओं में जो अमृतचंद्राचार्य की आत्मख्याति टीका है वो अर्थ की दृष्टि से तो बहुत बढ़िया है ही, लेकिन भाषा की दृष्टि से भी एक दयानंद भार्गव फिलोसॉफी के बहुत बड़े विद्वान, आज भी वो कहते हैं इस उम्र में 78-80 साल की उम्र 15-16 घंटे पढ़ते हैं, उसकी बात अपन को नहीं करनी है। अन्य मति विद्वान भी ये कहते हैं कि ऐसी आत्मख्याति जैसी भाषा मैंने पूरे संस्कृत साहित्य में नहीं देखी। भाषा भी, अरे अर्थ वो तो छोड़ो, अर्थ की बात, अर्थ तो लोकोत्तर है, क्योंकि लोकोत्तर कार्य को कराने वाला जो अर्थ है वो तो लोकोत्तर है। नहीं है बात, स्वामी जी ने कोई लौकिक शब्दों के अर्थ नहीं बताए, जो मर्म बताए वो लोकोत्तर थे। कि विकल्प का अर्थ राग क्यों किया, कि जिस विचार से राग की उत्पत्ति होती है वो विचार ही विकल्प है, वरना तो कहाँ तक जाएगी ये बात। कि जो शुक्ल ध्यान है अन्य का विचार करते हुए भी जहाँ राग आदि की उत्पत्ति नहीं होती है, ये राग अंश की उत्पत्ति हो तो वो विकल्प है, ऐसा है। देखो क्या लिखा है कि प्रथमतः बहुत, एक ही शब्द पर्याप्त है, क्या करे। ये बताया था कि करना कुछ भी नहीं है, करना कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है, कि तेरे करने से कुछ होता ही नहीं है। एक बात, किसी का कोई कर दे ये ऐसी वस्तु की व्यवस्था ही नहीं है, और वस्तु भी ऐसी नहीं है कि जिसको किसी अन्य की आवश्यकता पड़े। भैंसरी का 95 नंबर का बोल है वचनामृत में, कि वस्तु किसे कहते हैं, मैं भी एक वस्तु हूं ना, मैं भी एक वस्तु हूं, पुद्गल भी एक वस्तु है, आकाश आदि द्रव्य भी अपनी अपने आप में वस्तु है। वस्तु किसे कहते हैं, कि जो अपने आप में परिपूर्ण है, जिसे अपना कार्य करने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता न भासे उसको वस्तु कहते हैं। बात समझ में आती। दूसरा, सिद्धांत की अपेक्षा से देखो, चेतन भाई ने भी पर्याय त्रिकालवर्ती सिद्ध की थी, क्रमबद्ध की अपेक्षा से देखो तो प्रत्येक वस्तु का और वस्तु की प्रत्येक पर्याय का परिणाम निश्चित है, खचित है, वो अपने काल में पर्याय खचित है। और टोडरमल जी ने और ज्ञानियों ने उदाहरण तो खूब दिए, स्वामी जी ने भी दिया है उदाहरण, टोडरमल जी के द्वारा, कुकरो, समझ में आ गया सबको उदाहरण, कुत्ते का उदाहरण, बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चल रहा है, गाड़ी तो चल रही है बैलों के कारण से, और नीचे चलने वाला कुत्ता सोचता है कि मेरे करने से, मेरे चलाने से चल रही है। बापू ये कितनी बड़ी भूल है क्या नहीं अंदर देख लो नवीन भाई, कि मैं शिविर लगाता हूं ये तो उदाहरण मात्र है, कोई व्यक्तिगत बात नहीं थी, समझ में आ गई। शरीर और शरीर के परमाणु का, और यहाँ तक कि जीव और जीव के भावों का भी, जीव करता है क्या अंतर्मुहूर्त से अधिक कोई परिणाम टिके तो बताओ, स्वरूप में भी अंतर्मुहूर्त से अधिक टिके तो केवल ज्ञान हो जाए, शुभ अशुभ भाव भी जीव के हाथ में नहीं है। एक थोड़ी सी दूसरी चर्चा बताता हूँ, प्रश्न है षटखंडागम में कि जीव वहाँ कोई साधन है नहीं बाहर निकलने के, किस कारण से बाहर निकलते हैं, तो कहते विशुद्धि के बल से। यही बात रहस्यपूर्ण चिट्ठी में बनारसीदास जी ने भी की है, क्या की है कि मैंने जो याद आई बात वो दूसरे प्रयोजन से थी, है बनारसीदास जी की बात है वो दूसरे प्रयोजन से सहज आ गई, कि शुद्ध चैतन्य की जो जीव चर्चा करते हैं है? उसके लिए उन्होंने बनारसीदास जी ने उदाहरण दिया कि कोई व्यक्ति पानी में डूब गया और उसको ऊपर आना है, तो ऊपर आना है तो उसके ऊपर आने में ऊपर तो आ गया हो, लेकिन उसके ऊपर जो नाव थी वो टकरा गई, ये उदाहरण दिया, तो उसमें गर्वित तो योग्यता है बाहर निकलने की जो ऊपर आता है। परमार्थ वचन का कि बाहर निकलने की गर्वित शुद्धता की बात है, कि शुद्ध चैतन्य की चर्चा जो करते हैं उनकी चर्चा में गर्वित शुद्धता है, क्योंकि एक छलांग एक पक्ष मात्र पार करना है, कि मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन ज्ञायक परमात्मा हूं, ये विकल्प आ गया, इस विकल्प के तुरंत बाद अनुभूति है। यदि मुंह अगली पर्याय का, प्रकाश भाई की भाषा में, अगली पर्याय का मुंह उधर हो तो अगली पर्याय में निर्विकल्प दशा प्रकट हो जाए, क्योंकि जो विकल्प इस तरह का नहीं करता उसको तो गर्वित शुद्धता का भी नहीं। वो बात षटखंडागम की इसलिए याद आई कि वो जीव जो वहां से निकलते हैं दो प्रकार के परिणाम बताए, एक संक्लेश और विशुद्धि, शुभ अशुभ और शुद्ध की तो बात छोड़ो, है ना, कि शुभ अशुभ भाव भी दो प्रकार के, संक्लेश और विशुद्धि वाले, और अशुभ भाव भी दो प्रकार के और शुभ भाव भी दो प्रकार के। वो क्या कहते हैं कि संक्लेश और विशुद्धि का अर्थ क्या है कि अपनी ही चर्चा सुनने के लिए हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन जब बैठे थे तब जैसे परिणाम थे सुनने के, धीरे धीरे परिणामों में गिरावट आ गई, तो ये परिणामों में संक्लेश बना है, भाव शुभ ही रहा, भाव कौन सा रहा, शुभ ही रहा, लेकिन उस शुभ भाव में वो बात नहीं जो सुनने के लिए बैठे थे, जो बात पहले स्वामी जी की सुन करके अपूर्वता लगती थी, रोज रोज सुन करके वो अपूर्वता चली जाती है, तो पकड़ में आ गई बात है, एक बार में काम हो जाए तो हो जाए, नहीं तो फिर कानों का विषय बन जाए। क्या लिखा है कि प्रथमतः पहले, सबसे पहले मतलब संसार के सारे काम, सोगानी जी की तरह कि भाई पंगु समझ करके दो रोटी शरीर को दे दो तो दे दो, हमारे कमाने धमाने का विकल्प इतनी तैयारी चाहिए प्रथमतः। अरे जिस तत्व के कारण से अनादि काल के संसार का अभाव हो जाए, जिस तत्व के कारण से अनादि काल का दुख मिट जाए, और जो सुख कभी भोगने में नहीं आया, ऐसा अतीन्द्रिय सुख, जो शांति कभी नहीं मिली आपको, ऐसी अतीन्द्रिय शांति जिससे मिलती है, उस कार्य का नंबर पहला नहीं तो क्या दूसरा होना चाहिए? प्रथमतः सबसे पहले सबसे ऊंचे, कोई मान करे तो करे, कोई अपमान करे तो करे, मेरा काम तो मान सम्मान की तरफ लक्ष्य देना नहीं, मेरा लक्ष्य तो वहां जाना है जिसके लक्ष्य से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। ये तो सब उपदेश है, नहीं है बात समझ? वास्तव में तो भगवान आत्मा अनादिकाल से पक्षातिक्रांत ही बैठा हुआ है, तू ही पक्ष में अटका पड़ा है, तू ही पक्ष में अटका पड़ा है। भगवान आत्मा तो पक्षातिक्रांत अनादिकाल से ही है, बहुत रास्ता पार कर लिया है, थोड़ी सी बात है इसलिए शब्द बाहर आ गए। बात समझ में आ गई कि पहले जो स्वाध्याय के लिए बैठे थे और अब परिणामों में देख लेना होगा। हम विद्वानों का भी चयन करते हैं, अपनी परिणति देख लेना। मुझे कोई वो बात नहीं कहनी है कि कोई दूसरी बात हो, कि शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा की चर्चा जो सुनाए वो मेरे लिए विद्वान है, चाहे बालक हो चाहे बड़ा हो। क्योंकि स्वामी जी ने, मैंने दोपहर में ज्यादा नहीं खोला, भाव तो अंदर थे सारे, कि ये जो शब्द आए थे रजनी भाई, कौन से शब्द? श्रुत ज्ञान अवष्टम्भेन, ये जो दो शब्द थे, श्रुत ज्ञान अवष्टम्भेन, इसमें स्वामी जी ने देव शास्त्र गुरु यहां भी विवेक के लिए बताया, क्योंकि यहां यदि भूल रही तो आगे जो बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं कि आगे बताना चाहते हैं, ज्ञान स्वभावम आत्मानं निश्चित, निर्णय तो ये करना था क्या कि मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, निर्णय तो ये करना था, लेकिन कुदेव कुगुरु को शास्त्र में फंस गया, तो इसलिए स्वामी जी ने जब श्रुत ज्ञानावष्टम्भेन, श्रुत ज्ञान कि मेरे लिए कौन सा ज्ञान श्रुत ज्ञान है, ये भी निर्णय करना पड़ेगा कि जिस ज्ञान से, मतलब चश्मा कौन सा लगाऊं कि जिससे पढ़ने में आ जाए, नहीं है बात? मेरा नंबर अलग हो, भाई का नंबर अलग हो, उसका चश्मा मैं लगाऊं तो मुझे पढ़ने में नहीं आए, कि मेरे लिए श्रुत ज्ञान वो श्रुत ज्ञान है जो मेरे ही आत्मा को मुझे मेरे भीतर शुद्ध दिखाए, शुद्ध है उसको जैसा है वैसा दिखाए, वो श्रुत ज्ञान है, बाकी मेरे लिए ज्ञान का कोई प्रयोजन नहीं है। ज्ञान का प्रयोजन इतना ही है, श्रुत ज्ञान अवष्टम्भेन। तो अवष्टम्भेन के अर्थ में स्वामी जी ने थोड़ा सा हल्का सा दूसरा, मतलब मूल मर्म में थोड़ा सा खोला है कि श्रुत ज्ञान का अवष्टम्भ का मतलब क्या, कि 14वीं गाथा पढ़ ली, 6ठी गाथा पढ़ ली, 144वीं गाथा पढ़ ली, ये अवष्टम्भ नहीं, कि उसको पढ़ करके उसमें से सार निकाले, इस सार में भी ये निकाले कि मेरा ज्ञान स्वभाव तो, चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा तो सदा काल निराकुल स्वभाव वाला है, ऐसा यदि उस गाथा में से अर्थ निकलता हो, ऐसा अर्थ तेरी समझ में आता है तो तेरे लिए श्रुत ज्ञान का अवष्टम्भ है। बात समझ में आ गई? 144वीं गाथा पक्षातिक्रांत की गाथा है, समझ में आ गई? कि आत्मा शुद्ध है, कौन है? कि 16वीं 17वीं गाथा में आबाल गोपाल सभी को समझ में आता है, आ रहा है। सुबह तो प्रकाश भाई ने बता भी दिया था कि अशुद्धता के काल में भी, लेकिन किसको आ रहा है? वस्तु तरीके आना, यदि आना होता तो अब तक मोक्ष हो जाता, अनुभवी तरीके आ जाए तो सार्थकता है, वस्तु तरीके आने में कोई सार्थकता नहीं है। देखो क्या है कि श्रुत ज्ञान अवष्टम, अवष्टम का मतलब समझ में आ गया, शास्त्र ज्ञान पढ़ लिया, याद कर लिया, भाव भाषण नहीं है। तो ऐसे शास्त्र ज्ञान का कोई प्रयोजन नहीं है। टोडरमल जी ने भी उदाहरण दिया कि कोई सुंदर मनुष्य था, पहले स्त्री का पात्र मनुष्य करते थे, स्त्री का स्वांग बनाया, उसके मेकअप वगैरह अच्छा कर दिया, सुंदर लग रहा, नाच गाना हो गया, उसको देख करके दूसरे को काम विकार हो जाए क्योंकि उसको महिला मान रहे थे, लेकिन उसके भीतर उस जाति का किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता। ये तो उदाहरण है किसके लिए, कि जो 11 अंग पढ़े लेकिन जिसको भाव भाषण नहीं हो। भाव भाषण किसका, कि मैं चैतन्य ज्ञायक देव हूं, यही एक भाव है, उसका भाषण भाव भाषण है, बाकी शब्दों के अर्थ जानना ये भाव भाषण नहीं है। कि मैं शुद्ध चैतन्य ज्ञायक परमात्मा त्रिकाली देव, अनंतानंत गुणों का पिंड, अनादि नाथ चैतन्य परमात्मा मैं हूं, इस भाव का भाषण होना ये भाव भाषण है। और ये भाव भाषण है तो श्रुत ज्ञान का अवस्टम्भ है, और भाव भाषण नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। कितना ही ज्ञान हो पर्याय बदलते ही बदल जाएगा, कदाचित कुछ संस्कार रह जाए, किसी की भली होनहार हो और निसर्ग सम्यक दर्शन हो तो हो, लेकिन वो कोई राजमार्ग नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम इंतजार किसका कर रहे हैं, मरने का कर रहे हैं, किस चीज का कर रहे हैं, क्यों नहीं अपने स्वरूप में लीन हो करके आज ही उस काम को खत्म कर दे, किसका इंतजार कर रहे हैं। भाई मिला कोई, संजय मिला कल कि 2 साल बाद हम आ जाएंगे इस मार्ग पर, भरोसा है भाई,
अपने आप को धोखा है।
और ये संसार क्या है कि स्वार्थ का है, जहां मान कषाय की पुष्टि हो अच्छा लगता है, जो गाली दे बुरा लगता है। सभी इस जगत देख लो, बनारसी दास जी का जीवन देख लो, कि उनके घर में जब उनको कोड वगैरह हो गया था तो नाक में कपड़े बांध करके सब लोग तो दूर दूर चले गए, पत्नी और सास ने थोड़ी सी सेवा की। कहने का मतलब क्या है कि पर पदार्थ को देख करके राग करना और उसके लिए अपने काम को भूल जाना, ये सबसे बड़ी भूल है। उसके लिए जीव भूल रहा है, इंतजार कर रहा है, सुन करके ये जान रहा है कि मुझे तो बात समझ में आ गई है, मैं काम कर लूंगा, नहीं है बात समझ। अभी इसके बीच में जो वेटिंग रूम है इसके अलावा ये समझ लेना कि ऐसी बात तो अनंत बार समझी है। कैसी बात, कि जो आज क्षोभ की बात है कि मेरे तो ये बात पकड़ में आ गई है। एक बात और है, इस काल में निकृष्ट काल है, हुंडा काल है, इस काल में जो अपना काम कर लेगा वो निश्चित रूप से अल्प काल में मोक्ष जाएगा। वो 123 तो भद्र परिणामी मिथ्या दृष्टि जीव तो जाएंगे ही, हाँ? उसके अलावा जिसने भी अपने साध्य को साध लिया, कि स्वभाव के आश्रय से स्वभाववान जो पदार्थ है स्वभाव रूप हो करके उसमें रत हो जाना, यही साधना है। केवल इतनी सी बात है कि विभाव को छोड़ करके स्वभाव रूप अपने आप को देखना है, हैं? उस स्वभाव रूप देख करके स्वभाववान का आश्रय लेना। स्वामी जी तो कई बार कहते हैं कि लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है। किसको होती है, कि लक्षण में जो लक्ष्य को देखता है, नहीं है बात समझ। लक्षण में जो लक्ष्य को देखता है, लक्षण में लक्ष्य को जो देखता है उसे लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि होती ही है। अवस्टम्भेन के बाद एक ज्ञान स्वभावम, आत्मा कैसा है? ज्ञान स्वभावी है। आगे श्लोक है इस तरह का कि आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत करोति किम। कितनी बातें बताई पहली पंक्ति में ही अभी है। आत्मा ज्ञानम, आत्मा ज्ञानम, आत्मा ज्ञान है। सर्व विशुद्ध अधिकार में आत्मा को ज्ञान मात्र कहा, तो ज्ञान मात्र कहने का मतलब पर्याय मात्र कहा कि नहीं, ये अनंता अनंत गुण जिसके आगे ये झंडा चल रहा है ज्ञान का, ये वो आत्मा ज्ञानम, आत्मा ज्ञान रूप है, ज्ञान उसका लक्षण है। स्वयं ज्ञानम, लक्षण भी ज्ञान है, स्वयं भी ज्ञान रूप है। अब जो सारा ज्ञान रूप ही है, जैसे चीनी, एक बात और, पहले मैं अलवर में रहता था, वहाँ एक कपूर चंद जी प्रोफेसर, आप जानते होंगे, पलट अपने स्वामी जी के इधर आ गए, तो वो कहते हैं कि स्वामी जी का कोई भी प्रवचन कहीं से भी पढ़ो मक्खन की रोटी की तरह है। वो बात मुझे अब भी याद आती है इसलिए अभी बता दिया कि कहीं से भी चखो मक्खन की रोटी की तरह है, जो चीज चीनी से बनी हुई है वो कहीं से भी चखो मीठी लगेगी। आत्मा ज्ञान से बना हुआ है, कहीं से भी देखो, द्रव्य से देखो, गुण से देखो, स्वभाव से देखो, उसके कार्य से देखो, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम जो सब ज्ञान रूप ही है, तो ज्ञानात अन्यत करोति किम। पद्मनंदी पंचविंशति का उदाहरण सुबह आया था, हे युवानो, आया था ना, सबने सुना होगा, नहीं सुना है तो सुना करो, ऐसे स्वामी जी भी क्या कह रहे थे कि मेरे पास तो ये बात है, और ये बात किसी को बुरी लगती हो तो जैसे उन्होंने क्षमा मांगी, है तो हित की बात, इससे दूसरी कोई बात हित की नहीं है, हित की बात है, लेकिन हित की बात में जीव को अपना हित नहीं लगता, कषायों की बात में अपना हित लगता है, कोई मान करे सम्मान करे कि आप कितने सुंदर लग रहे हो, आप कितना सुंदर काम करते हो, अरे अरे मर गया वही। थोड़ी सी लोकेशना में बहुमूल्य मनुष्य भव चला जाता है। इसके एक समय की स्वामी जी के प्रवचनों में भी है बात कि तीन लोक का वैभव देकर के भी, चक्रवर्ती अपनी संपदा देकर के भी, इस मनुष्य पर्याय का एक समय भी बढ़ाना चाहे तो कितना बहुमूल्य भव है भैया। और ऐसे विषय भोगों में और तत्व ज्ञान के अभाव में समाप्त हो रहा है। आत्मा कैसा है कि ज्ञान स्वभावम आत्मानम निश्चित, इतना ही निर्णय करना है जीवन में। और निर्णय सविकल्प दशा में भी होता है, उस सविकल्प दशा में जो निर्णय है वो यथार्थ नहीं, बात इतनी सी है कि उस सविकल्प दशा में उस निर्णय का मुंह त्रिकाली ध्रुव की ओर है, लेकिन अभी त्रिकाली ध्रुव में नहीं पहुंचा, इसकी विशेष चर्चा अपन कल के स्वाध्याय में कर लेंगे।